दत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम्।
हरि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्योपनिषत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थोड़े दिन से उपनिषद के ये शांति मंत्र पर हमारा चिंतन चल रहा है। पूरे अस्तित्व का आधार वो तत्व कैसा है उनका परिचय हम पा रहे हैं। पूर्ण मदह विप्रकृष्ट दूर देशे विद्यमान सबसे सूक्ष्म है वो पूर्ण है। पूर्णमिदं वो पूर्ण तत्व से निसृत ये जगत है ये भी पूर्ण है। वो पूर्ण है और ये पूर्ण है। ये दृष्टिगोचर जो जगत है ये पूर्ण है। कैसे तो उनका एक हेतु वाक्य पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण ऐसे परब्रह्म से ये पूर्ण जगत निसृत हुआ है और इसीलिए ये भी पूर्ण है। ये सृष्टि के महासर्जन का सौंदर्य तो देखो। एक मुर्गी से अंडा होता है, वही अंडे को जब सेवन करके उनमें से एक बच्चा पैदा होता है। एक मुर्गी के उदर से अंडे को बाद करने से फिर भी वो बच्चा भी परिपूर्ण है और वो मुर्गी भी परिपूर्ण है। देखो सर्जन की इस क्षण में वो परम तत्व की दिव्यता उनका हमें दर्शन होता है। वरना जगत की दृष्टि से और व्यवहारु गणित की दृष्टि से हम देखें तो एक में से एक को बाद करो तो जिन में से जिसको बाद करो तो वो भी अपरिपूर्ण बन जाएगा, किंतु यहां ऐसा नहीं है। ये देखने के लिए ही उपनिषद की दृष्टि चाहिए, ये तत्व को देखने के लिए ही श्वेत केतु की दृष्टि चाहिए कि जिनको अपने पिता उद्दालक ने दिखाया कि वड के एक छोटे से फल में भी ऐसा ही परिपूर्ण वट छिपा हुआ है। और ये तत्व को देखने के लिए, इनका साक्षात्कार करने के लिए सतत हमें चिंतनशील रहना, ये जगत को देखना बहुत जरूरी है। आज तक इनके लिए बहुत चिंतन हुआ है, और इसीलिए हमारे जो ऋषि थे वो अंधश्रद्धालु नहीं थे, परम विज्ञानी थे, सत्य के शोधक थे। जैसे अंधश्रद्धालु होना ये विज्ञान के लिए भी कठिन है, तो वैसे ही अंधश्रद्धा सत्य शोधक ऋषि के लिए तो परम कठिन है। हमारे कोई ऋषि ऐसे अंधश्रद्धालु नहीं थे, और इसीलिए हमारे वेद ने तो वो वेद काल के ऋषियों और उनके उनको तर्क की उपमा दे दी कि ऋषि अर्थात तर्को वही ऋषि ही। क्या ऋषिक भगत तर्को वही ऋषि ही, तर्क है वही ऋषि है। और इसीलिए महर्षि मनु ने भी कहा कि तर्क का सहारा लेकर कोई ये सत्य की खोज में जाता है तो उनके हाथ में वो धर्म तत्व आता है। यस तर्केण अनुसंधे स वेद नेतरह, तर्क का आश्रय लेकर यह अनुसंधते, सह धर्म वेद, वही धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, न इतरह इतर नहीं। और इसीलिए देखो ये चिंतन की, विचार की खोज सदियों से हमारे भारत में हो रही है। भारत के महान वैज्ञानी डॉक्टर होमी भाभा, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, उनकी जीवनी में लिखा है, भारत जैसा प्राचीन देश, होमी भाभा थे वो अणुविज्ञानी थे, भारत जैसा प्राचीन देश डॉक्टर होमी भाभा जैसे अणुविज्ञानी को पैदा कर सका, उनका रहस्य क्या है? तभी लिखा है कि ये भूमि का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि यहां मानव सतत चिंतन करता रहा है, चिंतन करता रहा है, चिंतन करता रहा। ये भूमि की कोई खासियत है भारत भूमि की तो यही है कि यहां अखंड मानव चिंतन परायण रहा है। ये बहुत, आज थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टि से बात करेंगे। रूपल शेल्ड्रक नाम का विज्ञानी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है न्यू साइंस ऑफ लाइफ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो जीव विज्ञानी थे, और कई प्रकार का चिंतन उन्होंने दिया है। तो उनको जब ये पुस्तक लिखना था न्यू साइंस ऑफ लाइफ, तो भारत में आए और दक्षिण भारत के मंदिर के कोने में बैठे रहे कहीं दिन तक, ऐसी महान हस्ती कौन पहचाने। और वहां बैठकर उन्होंने ये पूरा पुस्तक लिखा, बहुत प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये वैज्ञानिक ही बहुत बड़े थे। तो उनको पूछने में आया कि आपने ये कार्य के लिए भारत ही क्यों पसंद किया। तब उन्होंने जवाब दिया कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या भारत ही ऐसा देश है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिसके अणु अणु में, जिसके एक एक रजा करण कण में पूरा अध्यात्म तत्व निहित है, चिंतन की धाराएं निहित है, और ये चिंतन जो यहां मिल सकता है वहां वो बाहर मिलना बहुत कठिन है। और इसीलिए ये भूमि में सतत ये चिंतन होता रहा होता रहा होता रहा, और वो चिंतन के मूल तक जहां हमारे ऋषि पहुंचे हैं, जहां हमारे आर्ष दृष्टा महापुरुष पहुंचे हैं, और जो कारण तत्व की उन्होंने व्याख्याएं की है, और जो व्याख्याएं आज हम सुन रहे हैं, शायद वहां पहुंचने के लिए पाश्चात्य जगत को कई साल लग जाएंगे। पहले ही दिन कहा था, चिंतन तो दोनों जगह हुआ है, वहां विचार शास्त्र हुआ है और यहां जीवन शास्त्र दर्शन शास्त्र हुआ है। उनको फिलॉसफी बोलते हैं, यहां दर्शन बोलते हैं। विचार शास्त्र जहां दौड़ दौड़ के पूर्ण होता है, वहीं से तो हमारा दर्शन शास्त्र प्रारंभ होता है। वही कारण तत्व का स्वीकार करके हमारे ऋषि मुनियों ने यह अध्यात्म शास्त्र हमें दिया है। तो पूर्ण मदह पूर्ण मिदम क्यों सब पूर्ण है, तो कि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से ही सब हुआ है, और इसीलिए ये सब पूर्ण है, सब पूर्ण है, पूरी सृष्टि पूर्ण है। परसों हमने चिंतन किया था कि ऐसा दुखमयी विकारमयी स्वभावमयी और ऐसा संसार भला पूर्ण कैसे हो सकता है, और ये संसार के ही बारे में हमारे शास्त्रों ने लिखा है, दुख दोष नाशवंत, ऐसे तो कहीं दोष यही संसार में है, तो भला इनको पूर्ण कैसे बोल सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया नित्य नैमित्तिक प्राकृत अत्यंतिक प्रलय, ये प्रलय का वर्णन किया, तो भला एक कैसे पूर्ण नित्य रह सकता है। देखो प्रलय, प्रलय, प्रलय नाम विनाश, संस्कृत में एक धातु है वर्ब नश, नश अदर्शने, नश नाश होना हम शब्द बोलते हैं, तो नश क्या है, अदर्शने, दिखाई न देना, वही अदर्शन है और वही नाश है। अस्तित्व शून्यवाचक नाश शब्द है ही नहीं, दिखना बंद हो जाना वही अदर्शन है। और उस दृष्टि से देखे तो ये सृष्टि में किसी का भी नाश नहीं होता, बस दृष्टि मर्यादा से दूर होता है। एक पात्र में हम कोई ऐसा द्रव पदार्थ डाल दे, मानो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भर दिया H2O2, तो धीरे धीरे वो हवा में अदृश्य हो जाएगा, होता है कि नहीं, हम उनको क्या बोलते हैं? इनका नाश हो गया, नाश नहीं हुआ, केवल अदर्शन हो गया। दूसरा दृष्टांत, बहुत गर्मी पड़ने पर समुद्र, नदी, तालाब, इस सृष्टि पर यहां कहां बिखरा हुआ जल, उनका बाष्पीभवन होता है, तो जल तो यहां से गायब हो जाता है, तो क्या जल का नाश हो गया? नहीं, अदर्शन हुआ, वही जल है ही। बादल का मिट जाना वही तो बरसात का सर्जन है। बरसात का मिट जाना वही तो नदी का सर्जन है। डेप्रिसिएशन और सर्जन ये तो निरंतर सतत प्रक्रिया है। बरसात, नदियां, पर्वत, भूमि, मिट्टी, ये सब के बीच का एक ऐसा खेल है, भव्य रमत है कि दिखाई में आता है ये मिटता है तो उनके मिटने से दूसरा सर्जित होता है, वो मिटता है सो उनसे तीसरा कुछ सर्जन प्राप्त करता है। तो हमारी सूक्ष्म छोटी दृष्टि है कि ये परिवर्तन को अपने स्वरूप में नहीं देख पाती और इसीलिए हम देखते हैं और चिंतन करते कि ये नाश हो गया, ये मिट गया। वास्तव में यहां मिटना कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही का वही है। इसलिए एक शब्द मुझे बहुत पसंद है, कोई महात्मा सन्यासी का देह त्याग होता है तो उनके लिए एक शब्द बोला जाता है, ब्रह्मलीन। क्या शब्द बोलते हैं? ब्रह्मलीन। देह विलय की ये घटना को ब्रह्मलीन बोला जाता है कि ब्रह्म में लीन हो गए। कार्यमय जो ये देह था वो कारण में, अपने कारण में लीन हो गया, अपने कारण में लीन हो गया। यही तो एकता है, यही पूर्णता को कुछ हमें समझना है। और यही पूर्णता जो सब में है, यही एकता जो अणु अणु में है, उनको हम कैसे स्वीकार करेंगे? केवल धार्मिक श्रद्धा से ही? देखो, ये जो कॉस्मिक एकता है, एक बार उनमें दृष्टि पहुंच जाए तो यहां भेद है ही नहीं। इसलिए तो हमारे वेदों ने कहा कि नेह नानास्ति किंचन, इह न नाना अस्ति किंचन, इह नाम इह लोके, यहां नाना, नाना नाम विविध प्रकार का, भिन्न भिन्न खंड रूप, न अस्ति किंचन, यहां कुछ है ही नहीं, यहां केवल एक ही तत्व है। एक समुद्र की व्यापक एकता को हम यदि देख पाए तो यहां किनारे पर रहा हुआ तरंग और 5000 किलोमीटर दूर रहने वाला तरंग, दोनों के बीच में सूक्ष्म संबंध है। दिखाई पड़ते हैं भिन्न भिन्न, फिर भी अभिन्न है। ये महासागर की जो विराटता है, उनकी जो एकता है, उनकी जो पूर्णता है, उनकी विस्मृति, वही हमें यहां का और 2000 किलोमीटर दूर वाला तरंग उनको भिन्न रूप से देखने के लिए मजबूर करता है। उनकी एकता, उनकी पूर्णता में यदि दृष्टि पहुंच जाए तो हमारे लिए दोनों एक ही हो जाते हैं। और चित्त में जब महासागरमय दृष्टि आ जाएगी तो वही महासागर में एकता का सौंदर्य देख पाएंगे। और यही एकता, यही पूर्णता क्या है, कुछ दिशा निर्देश वही तत्व की ओर ये मंत्र कर रहा है। पूर्ण मदह पूर्ण मिदम, वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, क्यों? क्योंकि पूर्ण से ही निकला है, वही पूर्ण सब जगह व्याप्त है, उनकी सत्ता से ही सब अधीन है, और इसीलिए इनका कारण ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए यह कार्य भी पूर्ण है। और इसीलिए तो हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने लिखा, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, एक ही तत्व को विप्राहा, वेद पाठाद भवेद विप्रह, ऐसे ज्ञानी है तो वो एक ही तत्व को बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न रूप से निरूपित करते हैं। तो ये जो योगज दृष्टि है, ऋषि दृष्टि है, हमें यही ज्ञान करवाती है। और केवल हमारे ऋषियों ने देखा वैसा ही नहीं, आज तक पाश्चात्य जगत में भी इनके लिए बहुत चिंतन हुआ। और विज्ञानियों ने अपनी प्रयोगशाला में जो साधनाएं की, जैसे ऋषि थे हमारे ऋषि, उन्होंने गहन अरण्य में जाकर साधना की, तो ऐसे पाश्चात्य विज्ञानी है, उन्होंने भी यही तत्व का अन्वेषण करने के लिए प्रयोगशाला उनको ही अपना आश्रम बना लिया और वहां साधना की, और वहां भी उनको ये समझ में आया कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। पदार्थ के अंदर जैसे जैसे भीतर और भीतर उतरते ही गए तो उनको ये विरोधाभास का ज्ञान हुआ। जिनको वैज्ञानिकों ने ईपीआर पैराडॉक्स कहा है, ईपीआर पैराडॉक्स, ईपीआर, ई नाम आइंस्टाइन, पी नाम पोडोल्स्की और आर अर्थात रोशन, आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोशन, ये तीनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत लिया कुछ तो ऐसा है रहस्य, और वही रहस्य के कारण ये पदार्थों के बीच कुछ संबंध है। पदार्थ के एक एक अणु में, उन्होंने शब्द प्रयोग किया विचित्र वर्तन, विचित्र वर्तन अर्थात कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसका कंट्रोल किसी और के पास है। तो ऐसा क्या है? और उन्होंने वो विरोधाभास उनको बहुत गौर से देखा कि पदार्थ के छोटे छोटे दो कण है, दो अणु है, एक दूसरे के नजदीक रहने के बाद जब वो अलग होते हैं, चाहे कितने भी दूर हो जाए, फिर भी एक दूसरे पर उनकी असर रहती ही है। उनके संकेत, उनका कम्युनिकेशन रहता ही है। और यही तो आश्चर्य हुआ वैज्ञानिकों को कि प्रकाश से भी गतिमान कुछ और तत्व है जो अखंड सिग्नल दे देता है, देता रहता है, और उनकी टेलीपैथी अखंड चलती रहती है। विश्व के एक कोने में एक घटना घटती है तो वो घटना से पूरा विश्व प्रभावित होता है। मान सकते हैं आप ऐसा? क्या बोलते हैं? होता है। विश्व के एक कोने में अनुचित घटना घटती है तो पूरा विश्व भी उनसे प्रभावित होता है, और अच्छाइयां बढ़ती है तो उनसे भी पूरा विश्व प्रभावित होता है। तो यह सबको जोड़ने वाला कोई तो सेतु है, इसलिए तो उपनिषदों ने वो तत्व के लिए शब्द का प्रयोग किया कि यह सेतु रिजाना नाम, यह सेतु रिजान, यह ये वो है सेतु हो, सेतु नाम ब्रिज, ब्रिज पुल, ये सेतु है। ब्रिज का काम क्या है? ये किनारा और वो किनारा, दोनों किनारों को जोड़ना, ये काम सेतु का है। यह सेतु रिजाना नाम, कोई सत्कर्म करता है तो उनके कर्म का फल प्राप्त करवाने के लिए जो सेतु है, जो माध्यम है, हमारी ऊर्जा को अखंड प्रवाहित करने वाला कोई सेतु है, तो वो क्या है? तो जैसे ये वैज्ञानिकों ने ये विरोधाभास देखा, कुछ अस्पष्ट और रहस्यमय देखा, तो अब उनको क्या कहे? कुछ समझ में आया नहीं तो हिडन वेरिएबल्स बोल दिया, ये गुप्त परिवर्तन कुछ तो है, कुछ है। आइंस्टाइन है वो कार्य कारणवादी है, बिना कारण के कुछ नहीं संभवित होता ऐसा मानने वाला वैज्ञानिक है, जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और इसलिए कुछ तो है, इसलिए अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया और चमत्कार बोल के छूट गए। क्या चमत्कार? कि पदार्थ के कण कण में टाइनी इंटरनल क्लॉक्स रहती है, ऐसा बोल दिया। एक सूक्ष्म सूक्ष्म टाइमिंग है कि वो कुछ कार्य करती है। तो जैसे ईपीएस आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोशन, उन्होंने ये तारण दिया, नील बोहर, हेसनबर्ग, वो सबने ऐसा बहुत पदार्थ का एक सूक्ष्म दृष्टि से अनुशीलन किया, और उनको भी यही सार मिला कि भौतिक जगत वो भिन्न भिन्न पदार्थों से बना हुआ नहीं है, वो अविभाज्य अखिल इंडिविजिबल हॉल, जिसको अलग नहीं कर सकते, ऐसा कोई एकत्र, वो एकता से बना हुआ कुछ है, ऐसा कुछ वो कह पाए। तो पूर्ण कारण की ओर तो पहुंचने की अभी उनकी केवल बुद्धि तो वहां पहुंच भी नहीं सकती, इसलिए कुछ तो ऐसा मिला है उन सबको, कुछ है, सब में है, कारण रूप है, कोई तो करता है और वो एक है। विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग, जो स्विट्जरलैंड के थे, अनात्मवादी मनोवैज्ञानिक थे, फिर भी जैसे जैसे वो अंदर और अंदर उतरते ही गए, आइंस्टाइन के भी फॉलोवर रहे, वो स्विट्जरलैंड में रहते थे, उनका घर का जो द्वार था तो द्वार के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा रहती थी। कार्ल यूंग सर्पधारी महादेव, उनकी प्रतिमा रखते थे। ऐसी आस्तिकता कहां से प्रकट हो गई? बहुत चिंतन किया था और उन्होंने जो साक्षात्कार किया, उनके मूल में भी एक वार्ता पढ़ी थी, सुननी है श्री रमन जी? सुनेंगे वैज्ञानिक की वार्ता। इस प्रकार कि 1909 में 1999 वो जो कार्ल युंग थे वो अमेरिका गए थे अपने मित्र फ्रॉइड के साथ। साइकोलॉजी में फ्रॉइड का बहुत बड़ा नाम है। कोई साइकोलॉजी को पढ़ता है थोड़ा बहुत अभ्यास किया तो फ्रॉइड तो साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। उनके ये परम मित्र थे, उनके साथ एक कार्ल युंग अमेरिका गए थे। रात को सोए थे, स्वप्न आया, दो मंजिले का बड़ा मकान और दूसरे फ्लोर पर एक कार्ल युंग थे। और स्वप्न में उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा तो ऐसा घर, मूल्यवान पेंटिंग्स दीवारों पर लटकाए हैं, घर की बहुत सुंदर बढ़िया आकर्षक सजावट है और एकदम आधुनिक, वो जो रहते थे ऐसा ही कुछ घर वही काल का वही समय में, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। तो उनको मन में विचार आया, ये दूसरा फ्लोर तो ऐसा है तो जरा देख लूं ये घर का पहला फ्लोर कैसा है। तो वो नीचे उतरे तो सब पुरानी चीजें, और वो चीजें सब ऐसी दिखती थी कि मानो 15वीं या 16वीं सदी की थी हो। वो दूसरे फ्लोर पे भूमि पर भी ऐसे लाल रंग की ईंटें बिछाई रखी थी, और मध्य युग की जो प्रक्रिया पद्धति थी ऐसा ही पूरा फ्लोर घर दिखा। बड़ा द्वार था, उनके पास गए, पास में जाके विचार करने लगे कि अब तो पूरा घर ही देख लेते हैं। तो पहले फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आए और वो बड़ा द्वार था, उनको हटाया और थोड़े नीचे उतरे तो एकदम पुरानी सीढ़ी, ऐसे पत्थर ही केवल रखे थे। और वहां जाकर देखा तो बहुत पुरानी चीजें उनको दिखाई में आई, रोमन साम्राज्य के समय की। जैसे नीचे उतरते गए पुराना तो आगे थोड़े गए तो एक कड़ा नजर में आया, तो कड़ा पकड़ के थोड़ा खींच लिया, वहां से भूगर्भ में भी एक गुफा जैसा कुछ खुला तो वहां गए। अंधेरा था, अग्नि किया और वही गुहा में जाकर ये जो कार्ल युंग थे उन्होंने देखा सब भूमि धूल वही लीपण किया हुआ, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन थे और मनुष्य की कुछ हड्डियां खोपड़ी और आदि मानव के समय की जो संस्कृति, जैसा उन्होंने कुछ सुना था, इतिहास जाना था, अनुमान किया था, वैसा ही कुछ देखने को मिला। तब ऐसा कुछ रहस्यमय आश्चर्यमय उनको स्वप्न आया। सुबह उठ के फ्रॉइड को बात की तो ये तो फ्रॉइड ने बोल दिया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कि ये तो सब डेथ विष है, ये मृत्यु विष, ऐसा कुछ काल चक्र मन में चलता रहता है। तो उनकी तो बात बड़े थे तो मान ली, किंतु अंतर में हा नहीं हुई। बाद में उन्होंने अपना एक बहुत चिंतन दिया इसके ऊपर कि दूसरे फ्लोर में मैंने जो देखा वो मेरे मन की वर्तमान चेतन अवस्था थी, पहले फ्लोर में देखा ये अचेतन की ऊपर की भूमिका थी, व्यक्तिगत पर्सनल अनकॉन्शियस कहा, और उनके नीचे पूरा अंधेरा था, गुहा थी। तो जितने अंदर आए तो वही भूतकाल में जब आदि मानव तक पहुंच गए तब फ्रॉइड को ये कार्ल यंग को ऐसी अनुभूति हुई कि मूल तो सब पहले ऐसे ही थे, आदि मानव की अवस्था में थे और तब व्यक्ति अपने आप को वृक्ष प्राणी ये सबसे भिन्न नहीं गिनता था, आदि मानव था। उनका जीवन कुछ ऐसा ही था कि जैसे मानव मानव के साथ एकता से व्यवहार करता है, वैसे ही वो पशुओं के साथ पक्षियों के साथ ऐसा एकात्म भाव से व्यवहार करता है। और इसीलिए आदि मानव उनकी भाषा ही ऐसी थी कि पशु पक्षी की भाषा वो भी समझ सकता था और ये भी अपनी वाणी से पशु पक्षियों को सृष्टि को संकेत दे सकता था। तो जैसे जैसे वो अंदर उतरता गया तो उनको कुछ ऐसी एकता का दर्शन हुआ और इसलिए उनका तो यही मानना है, युंग का, भिन्न भिन्न राष्ट्रों में देश भिन्न है, भूमि भिन्न है, धर्म संप्रदाय और उनकी मान्यताएं भिन्न है, फिर भी अपनी अलग अलग भाषाओं में वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी उनका मानना है, अंततः गत्वा वो सब कुछ एक जैसा ही है। यदि देखे तो अंततः गत्वा कोई तो है कि वो एक तत्व में आकर उन्हीं की ओर सब जा रहे हैं। तो यही से उनको ज्ञान हुआ कि जैसे प्रकृति के नजदीक जाए, मूल में जाए, तो कुछ ऐसा है जो सबको समान न्याय से ड्राइव करता है। तो ऐसे सभी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा बहुत चिंतन किया कि दृष्टि से, जैसे न्यूटन, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कहा कि व्हेन आई सी द मिरेकल ऑफ थंब, मैं जब एक अंगूठे को ही देखता हूं तभी मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी वन क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। एक कैसी रचना है, और कोई बाहर दौड़ा, कोई अंदर दौड़ा, कोई पदार्थ के भीतर गया, किंतु जहां गया कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो मिला कि वही आश्चर्यों ने सबको ये तत्व की ओर चिंतन करने के लिए मजबूर तो कर ही दिया है। और इसीलिए पाश्चात्य विज्ञान भी यही तत्व की ओर आया है, आ रहा है और एक दिन पहुंच जाएगा। और इसलिए हमारे ऋषियों, उन्होंने ये दर्शन किया, उनके लिए बहुत चिंतन किया और उनके फल स्वरूप आज हमें ये चिंतन प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी यही कुछ किया कि कुछ तो है और वो क्या है, उनकी ओर हमारे शास्त्र हमें ले जाते हैं। और यहीं श्वेत केतु का स्मरण हो जाता है कि पिता ने उनको ये प्रश्न पूछ लिया कि वट की पूर्णता, वृक्ष की पूर्णता उनकी बीज में भी है, पूर्णतः है। माता शिशु को जन्म देती है फिर भी वो पूर्ण रहती है, अखिलता में स्थित है, और वो शिशु भी पूर्ण ही है। तो ऐसा ही कुछ सौंदर्य, पूर्ण तत्व का सौंदर्य, जैसे मैंने एक दिन कहा था, ये पूरी सृष्टि पूर्णता ही दे रही है, क्योंकि उनका कारण ही पूर्ण है। कहीं भी भूमि में कोई भी बीज बो दीजिए और वो बीज जैसा है, पूरी सृष्टि वो तत्व उनको लाकर अर्पण कर देगी। एक नीम का वृक्ष बोते हैं तो उनमें वो रस ये सृष्टि कहां से लाती है? मिट्टी को चाख लो, कोई स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे हमारे संप्रदाय में एक पंक्ति है, आंबा आंबली लींबड़ा सरघवा, सीता फली से लड़े, द्राक्ष दाड़म कौठ कौच कदली, वृक्षो तथा वे लड़ी, सर्वे ये कज पृथ्वी नो जल पिए, सर्वे समीपे रहे, जे वो जाति स्वभाव हो य जगमा, तेवा गुणों ते लहे। एक ही पृथ्वी में ये सभी वृक्षों को बो दीजिए, आम का वृक्ष वो आम ही उत्पन्न करेगा, इमली का वृक्ष खटास अर्पण करेगा, ये नीम का वृक्ष है वो कड़वाहट ही देगा, वहीं पर गन्ना बो दो तो मधुर रस अर्पण करेगा, और मर्ची है वो तीखा रस ही देगी। देखो पास पास में ही बोए है, शुगर वाटर नहीं डालते तो भी शुगर कैंडी शुगर केन बन जाती है। तो क्या है ये सबके पीछे? कोई पूर्ण तत्व है, वही पूर्णता ये पूरी सृष्टि को अर्पण करता ही रहता है, अर्पण करता ही रहता है। और ऐसा ही कुछ एक जुड़ाव वाला, एक तत्व से निहित ये विश्व हमें प्राप्त हो रहा होया हुआ है, तो यही पूर्णता में हम लीन हो जाए, पूर्णता को समझ पाए, तो यही पूर्णता होना, पूर्णता का, पूर्ण आनंद का रहस्य है। इसलिए मैंने जैसे कहा था कि ये मंत्र क्या है, उपनिषद हमें जो तत्व का परिचय करवाता है, उनके ग्रहण के अनुरूप हमारी बुद्धि को करने वाला ये शांति मंत्र है। पूर्ण मदह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अंतिम पाद है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनका चिंतन परसों करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न? हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। बोलिए। ऋतिक ने क्या पूछा वही सुनाई नहीं दिया। ऋतिक ने क्या कहा? कैसे समझ पाए पूर्णमिदम? वो मैं समझ नहीं पाया, पूर्णमिदम तो हम समझ रहे। क्या प्रश्न प्रश्न क्या था? हाँ, वो जगत का अस्तित्व तो है ही, किंतु वो ब्रह्म तत्व की सत्ता के अधीन जगत का अस्तित्व है। और जैसे ब्रह्म पूर्ण है इसीलिए ये जगत को पूर्ण बोल सकते हैं। और जैसे आज बोले कि ये जगत नाशवंत दिखाई देता है किंतु इसका नाश नहीं होता, उसका अदर्शन होता है, यहां से वहां वहां से वहां ही जाता रहता है, किंतु वो तत्व तो वैसा का वैसा ही रहता है, केवल उनमें परिवर्तन आता है जो परिवर्तन हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। उनका अस्तित्व परिवर्तनशील है, ऐसा ये जगत का स्वभाव है, बाकी वो तो पूर्ण ही है। समझे? हेलो, क्या जगत की उत्पत्ति के साथ? जगत की उत्पत्ति के साथ तो संबंध यही कि जैसे आगे हमारी श्रुतियां इनको बहुत स्पष्ट रूप से करेंगी कि एक ब्रह्म तत्व है, कारण तत्व है, उन्होंने संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं बहिरूप बहु रूप से हो जाऊं। ऐसा जब वो तत्व ने संकल्प किया तो उनके संकल्प से ये सृष्टि में परिवर्तन आने लगा और क्रमशः ये सृष्टि होती ही रही। तो वो ब्रह्म के ईश्वर के संकल्प अधीन ये चैतन्य और जड़मय सृष्टि कैसे हुई, वो पूरी सृष्टि प्रक्रिया है। और कैसे ये सृष्टि की पूर्णता है, ये तो क्या है ना कि जैसे हम ये उपनिषद के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से जैसे ये सृष्टि रचना प्रकरण ये सब में गौर से धीरे धीरे सब देखेंगे तो एक एक क्षण में हमें वो प्रतीति आएगी किस तरह से ये जगत को देखना है, किस तरह से ये जगत को समझना है। जैसे पहला ही मंत्र आएगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो पहला ही आएगा कि ये सब क्या है, तो कि ईशावास्यम है, भगवान से व्याप्त है। तो वहीं से ही हमारा प्रारंभ होगा चिंतन का कि कैसे अणु अणु में वो ब्रह्म वो परमात्मा व्याप्त है और उनके संबंध से ये सृष्टि की पूर्णता है। ऐसे तो कहीं श्रुतियों के माध्यम से हम देख पाएंगे, किंतु ईश्वर अधीन होने से ये पूर्ण है, ईश्वर के संकल्प से इनका निर्माण हुआ है और ईश्वर के संकल्प से ही इनका विनाश और प्रलय होता है। ऐसा यह सृष्टि का स्वभाव है। हाँ, ऐसे सब जगह रामानुजाचार्य जी कहते हैं, अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादि लीले, ये अखिल भुवन की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले, ऐसे ही विशेषण वो भगवान का यह महिमाशाली विशेषण है, तो यहाँ से ही सब प्रारंभ होता है। जैसे एक ओर से देखो तो भगवान का महिमा ही यही है, पूर्ण स्वरूप उनका जैसा है, उनके गुण जैसे है, उनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। हमारे मन, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि यह जगत के बाहर का चिंतन भी नहीं कर सकती, तो वास्तव में भगवान का स्वरूप जैसा है वैसा तो कौन समझ पाएगा। फिर इसलिए वेदों ने भगवान को प्रार्थना, और न इति न माप सके, न नाप सके, ऐसा ही बोले सब वेद। बाद में वेदों ने भगवान को प्रार्थना की कि वेदास्तोतुम प्रवृत्ता, स्तुति में प्रवृत्त हुए और बोले कि भगवान आपके पूर्ण स्वरूप का तो हम किसी और के एक कोने का भी वर्णन नहीं कर पाते, तो अब आप कुछ लीला कीजिए, कुछ करिए, तो आपके कार्य के माध्यम से आपके गुण गाए, और तब भगवान ने यह सृष्टि रची। तो शास्त्र मात्र ने जो भगवान का महिमा गाया है वो केवल सृष्टि के माध्यम से ही गाया है कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, ऐसे आश्चर्य करने वाले सूर्य चंद्र अग्नि तारा, ये नदियां बहती है, ऐसा ये सब करते हैं, तो ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है। तो हम जितना भगवान का गुणगान गाते हैं वो केवल और केवल भगवान का ये कार्य देखकर ही गुण गाते हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कैसे गुण गाएंगे। तो यही में तो भगवान का कर्तृत्व और भगवान का महिमा ज्यादा हमें दिखता है, समझे।
हाँ हाँ, तो उसमें ऐसा भी है कि जैसे भगवान का भगवत भक्तों का भी महिमा है, तो उनका जो महिमा है वो उनके कार्य से ही देखा जा सकता है, या फिर एग्जिस्ट मतलब कि कई बार ऐसा एग्जिस्टेंशियल फील होता है कि नहीं, अगर वो कुछ कार्य भी नहीं करते ऐसे ही बैठे रहे तो भी उनका ऐसा कुछ उनमें है जो मतलब कि इनविजिबल है, बट ऐसा कुछ है, तो उसमें भी ऐसा दोनों तरफ से हो सकता है कि
बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनको कार्य की कोई जरूरत भी नहीं है, ये सब तो हमारे लिए किया है, ऐसा बोल सकते हैं। वो तो स्वयं महिमनी प्रतिष्ठिता है, अपने आनंद में, अपने महिमा, उनको कुछ अपेक्षा ही नहीं है, तो उनको तो कुछ जरूरत नहीं है, ये सब महिमा गाते वो हमारे लिए हम गाते हैं, उनसे हम कृतार्थ होते हैं। ये जो स्तुति हम करते हैं, भगवत गुण की प्रशंसा करते हैं, तो उनसे क्या होता है, जैसे हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम आनंद में आ जाते हैं, वैसे हम भगवान की प्रशंसा करे तो वो फूले जाते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम जितनी स्तुति करे, जितने भगवान का महिमा का गुणगान करे, तो वैसे ये अणु अणु में, ये सृष्टि में जो महिमा का गुणगान करते हैं वो भगवान का हमें दर्शन होता है, और वही पूर्णता की ओर हमारी गति होती है, और उनसे ही हमारे कष्ट दुख और वेदनाएं दूर होती है। तो वास्तव में तो भगवत स्तुति भी चित्त प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए, उनके लिए कुछ है ही नहीं, समझे। वो तो अपने महिमे में पूर्ण प्रति महिमा में पूर्ण प्रतिष्ठित है, करने की भी जरूरत नहीं, और दूसरा कि उन्होंने ये सब किया इसलिए बड़ा, ऐसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमें दिखाई पड़ता है उनकी तो उनके पास कोई गिनती ही नहीं है, तो इनके कारण उनकी मोटाई कैसे। आज ही सुबह वचनामृत पढ़ रहे थे, तो वचनामृत में ही ऐसा कोई आया कि भगवान ये सृष्टि का विनाश करते हैं, तो ये भगवान को उत्पत्ति करते हैं, जीवों को कल्याण करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, बाद में उनका नाश करते हैं, तो ये सब भगवान को करने की क्या जरूरत है। वो धारे तो सीधा ही प्रलय काल में माया के गर्भ में जीव सब पड़े हैं, तो वहीं से ही सबका मोक्ष कर सकते हैं, तो यह सब करने की भगवान को क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न स्वामीनारायण भगवान को पूछा गया। तो भगवान ने ऐसा ही जवाब दिया कि भगवत महिमा की दृष्टि से देखे तो इतने जीवों को जन्म दिया, इतने का कल्याण किया, ऐसी गिनती भगवान के सामने कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक दो नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके एक रोम के एक कोण में अणु अणु की तरह उड़ते रहते हैं। तो कहीं ब्रह्मांड का सर्जन होता है और कहीं ब्रह्मांड का विनाश होता है, पता ही नहीं चलता। जैसे भगवान ने दृष्टांत दिया कि कोई बड़ा चक्रवर्ती राजा है और लाखों गांव उनकी निगरानी के नीचे है, तो एक दिन में 5-15 गांव नाश हो जाते हैं और 5-15 गांव नए बन जाते हैं, तो उनकी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को पता भी उनका नहीं रहता है, ऐसा होता ही रहता है। तो वैसे ही ये सर्जन विनाश ये सब तो भगवान की एक संकल्प से, ऐसा कोई एक अक्षर मुक्त ये सब मैनेजमेंट कर लेता है, उनमें भगवान को पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अनंत करोड़ कोटि ब्रह्मांड ही ऐसे चलते हैं, तो ये एक ब्रह्मांड और एक ये सृष्टि उनके कारण भगवान का महिमा है, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। फिर भी हमारी ओर से तो ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है, इनके आगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और इसीलिए यहां जितने आश्चर्य हम देख पाते हैं तो वो आश्चर्य को देखकर हम भगवान में उनका आरोपण करते हैं कि हे प्रभु आप कितने बड़े हैं कि आप इतना ज्यादा करते हैं। तो ये हमें अपनी शांति के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए हमें यह करना है, हमारी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। और जो कोई भी कुछ भी करते हैं वो भी क्यों करते हैं, तो हमारे आचार्यों ने यही कहा कि जीव के ऊपर अनुग्रह से करते हैं, करुणा से करते हैं, प्रेम से करते हैं, यही उनकी कृपा है, करुणा। अच्छा, अस्तु, आज इतना रखेंगे। जय स्वामीनाथ।